ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। 28 नए राजनीतिक दलों द्वारा दल पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन। निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना 2082 राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा स्वीकृत। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। विभिन्न 28 राजनीतिक दलों ने दल पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन पेश किए हैं। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने जानकारी दी कि आयोग द्वारा अब तक दल पंजीकरण के लिए आवेदन पेश करने के लिए निर्धारित समय के विभिन्न 28 नए दलों ने आवेदन पेश किए हैं। आयोग ने बताया है कि अब तक 7 दलों ने पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और अन्य दलों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। आयोग ने आगामी माघ 11 को राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन और फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रयोजन के लिए कल से मार्गशीर्ष 10 तक दल पंजीकरण के लिए समय निर्धारित की है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आज हुई बैठक में आगामी फाल्गुन 21 को निर्वाचन को लक्ष्य में रखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना 2082 को स्वीकृति दी है। गृह मंत्रालय में हुई बैठक के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले ने जानकारी दी कि बैठक में चुनाव को लक्ष्य में रखते हुए सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करने के बाद सुरक्षा संवेदनशीलता के आधार पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए एकीकृत सुरक्षा योजना को स्वीकृति किया है। गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में चुनाव सुरक्षा के लिए नेपाली सेना की तैनाती करने का निर्णय किया गया और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समक्ष इसकी सिफारिश करने का फैसला किया था। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने नई पीढ़ी की भावना के अनुरूप काम करते हुए न्याय की अनुभूति दिलाने वाले तरीके से कार्य संपादन करने का निर्देशन अपने अधीन स्थल निकायों को दिया है। गृह मंत्रालय में आज हुई नियमित एसएमटी बैठक में गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि कर्मचारियों को सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना पूरा ध्यान आगामी चुनाव पर केंद्रित करना चाहिए। बैठक में गृह सचिव रामेश्वर डंगाल ने राष्ट्रीय परिचय पत्र नियमावली, सशस्त्र प्रहरी नियमावली सहित दर्जनों से अधिक नियमावलियों के संशोधन पूरे होने की और नागरिकता नियमावली अंतिम चरण में पहुंचने की जानकारी दी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने देश को राजनीतिक गतिरोध से निकास दिलाने के लिए विघटित प्रतिनिधि सभा की पुनर्स्थापना होने की बात पर जोर दिया है। आज गोंडू स्थित अपने निवास पर प्रेस चौतारी नेपाल की टीम के साथ बातचीत करते हुए अध्यक्ष ओली ने इस मांग को दोहराया कि चूंकि संसद का विघटन की प्रक्रिया असंवैधानिक और अनाधिकृत तरीके से की गई थी, इसलिए इसका पुनर्गठन होना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि संवैधानिक असंवैधानिक तरीके से संसद के विघटन से देश की राजनीतिक प्रणाली में एक गलत मिसाल कायम हो सकती है। विदेशों में रह रहे और मतदाता नामावली में नाम दर्ज नेपाली नागरिकों के लिए संबंधित देश के दूतावास नियोग में मतदान केंद्र की व्यवस्था करने के हिसाब से सरकार ने अध्यादेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अध्यादेश के मसौदे को सरोकार वालों के सुझाव देने के बाद कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय में भेजा गया है। ये अध्यादेश जारी होने के बाद क्रियान्वयन में आ जाए तो विदेशों में रहे नेपाली नागरिक समानुपातिक प्रणाली का मतदान कर सकेंगे। बीते भाद्र 23 और 24 गति को हुए जेनजेड प्रदर्शन के दौरान जान गंवाए उदयपुर के दो युवकों को सरकार ने शहीद घोषित किया है। मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते आ रहे बेलका नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के संतोष विश्वकर्मा और चौदंडीगढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के सार कुमार राय की मृत्यु होने के बाद बच्चों की शिक्षा और रोजगारी की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने कहा है कि देश के समग्र आर्थिक क्षेत्र को गतिशील बनाने के लिए पूंजी बाजार और रियल एस्टेट कारोबार को और अधिक सक्रिय बनाना आवश्यक है। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए इन दोनों बाजारों की सक्रियता अनिवार्य है। अर्थमंत्री खनाल के अनुसार रियल एस्टेट कारोबार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार अध्यादेश के माध्यम से कानून में आवश्यक बदलाव करने पर आंतरिक चर्चा चल रही है। मंत्री खनाल ने जानकारी दी कि पिछले भाद्र 23 और 24 में जेएनजी आंदोलन में से 55 जिलों के 514 स्थानीय तहों में भारी क्षति हुई है। निजी क्षेत्र में लगभग 36 अरब रुपए के बराबर की क्षति का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि जंजैड प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिरासत से भागे हुए लोग और लूटे हुए हथियार वापस न आने के कारण सुरक्षा पर चुनौतियां बढ़ गई है। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में ये बात बताई गई है। म्यागदी और मुस्तांग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले काली गंडकी कॉरिडोर के अंतर्गत मालढुंगा बेनी सड़क के उन्नयन के लिए कल से प्रतिदिन 7 घंटे के लिए सड़क बंद रहेगी। म्यागदी के प्रमुख जिला अधिकारी बद्री प्रसाद तिवारी ने जानकारी दी है कि सड़क के इस हिस्से में ब्लैक टॉपिंग का काम तेजी से चल रहा है और वाहनों के आवागमन से समस्या उत्पन्न होने के कारण कल तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सड़क बंद करने का निर्णय किया गया है। डोलपा की त्रिपुरा कोट नगरपालिका वार्ड नंबर 1 त्रिपुरा कोट से जुमला के मौर्य सड़क को जोड़ने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक लागत में सड़क स्तरोन्नति का कार्य शुरू हो गया है। रुकुम पश्चिम के 8वीं कोट नगरपालिका 6 त्रिवेणी से जुमला को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण के पूरा हो जाने के संदर्भ में अब एक नया मार्ग से भी जुमला को जोड़ने का काम शुरू किया गया है। करनाली प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्रालय ने बताया है कि यदि करनाली के 2 प्रमुख पर्यटन स्थल रारा तथा सेफोकसुंडो झील सड़क से जुड़ जाते हैं तो इससे दोनों जिलों के पर्यटन प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी और स्थानीय लोग पर्यटकों को लक्षित कर व्यवसाय करके आर्थिक रूप से लाभ अर्जित कर सकेंगे। पूरा पश्चिम राजमार्ग के उत्तरी क्षेत्र में हाथियों के एक झुंड के जिले में प्रवेश करने की सूचना देते हुए डिवीजन वन कार्यालय झापा ने वहां के वासिंदों से सावधान रहने का आग्रह किया है। गश्ती और मार्किंग करके वहां के लोगों को आगाह किया जा रहा है, ये जानकारी वन कार्यालय ने दी। कार्यालय प्रमुख भरत बाबू श्रेष्ठ ने बताया कि मोरंग से अपने बच्चों समेत 25 से 30 की संख्या में हाथियों का एक झुंड झापा में घुस गया है, इसलिए उनसे बचने के लिए माइकिंग के जरिए स्थानीय लोगों को आगाह किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले के लघारी गोठ में स्थित एक पटाखा कारखाने में शनिवार शाम हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। सिंध के प्रवक्ता हसन उल हसीब के अनुसार विस्फोट के बाद लगी भीषण आग ने पूरे कारखाने को जलाकर राख कर दिया था। बचाव कर्मियों ने घटनास्थल से शवों को निकालकर और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा है, जहां घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। विस्फोट के कारण के बारे में संबंधित अधिकारियों ने जांच जारी रखी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 28 नए राजनीतिक दलों द्वारा दल पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन। निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना 2082 राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा स्वीकृत। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।